तो आज हमारे सामने विज्ञान की दुनिया का एक दिलचस्प अध्याय है। लगता है इसमें हमारा एक एआई दोस्त ईबी भी शामिल है।
हाँ,
बिल्कुल, हमारा मकसद है इस अध्याय के मतलब जरूरी हिस्सों को समझना। विज्ञान असल में है क्या, ये हमारे आसपास कैसे काम करता है।
और वो साइंटिफिक मेथड क्या चीज है?
हाँ बिल्कुल, और ये सब शुरू होता है जिज्ञासा से,
बिल्कुल, क्यूरियोसिटी से।
जैसे बचपन में होता था खिलौने खोलकर देखना कि अंदर क्या है, कैसे चलता है, बस वही।
हाँ भाई,
चलिए तो फिर इस अध्याय को खोलकर देखते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा क्या निकल कर आती है, क्या है ये?
देखिए, ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये ब्रह्मांड को समझने का एक व्यवस्थित तरीका है, एक नजरिया कह सकते हैं।
व्यवस्थित तरीका मतलब?
मतलब इसमें ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखना, फिर सवाल पूछना, उसके बाद एक हाइपोथेसिस बनाना, मतलब एक अंदाजा लगाना कि ऐसा क्यों हो रहा है,
ठीक है,
का एनालिसिस करना।
अच्छा,
और ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है,
हाँ बिल्कुल,
एक साइकिल जैसा। और जैसा अध्याय में बताया गया है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में नहीं होता।
सही। ये तो हमारे चारों तरफ है, रात में तारे टिमटिमाते हैं।
हाँ, वो क्यों? उनके अंदर हो रही न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से। ये महज रोशनी नहीं है,
अरे वाह, और फूलों का खिलना?
वो भी विज्ञान है, फोटोसिंथेसिस है। और पौधे कैसे पर्यावरण के संकेतों पर, जैसे रोशनी, तापमान, इन पर प्रतिक्रिया करते हैं।
अच्छा,
इंद्रधनुष कैसे बनता है या बिजली क्यों कड़कती है, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। इनके पीछे विज्ञान के सिद्धांत काम करते हैं।
तो इनको समझने से दुनिया थोड़ी ज्यादा जानी पहचानी लगती है, डर कम होता है
बिल्कुल, डर या अंधविश्वास की जगह एक समझ पैदा होती है।
और हमारी पृथ्वी।
अध्याय में इसे एक जीवित ग्रह कहा गया है। हाँ, अनोखा है, यहाँ हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, मतलब जीवन के लिए जरूरी सब कुछ है।
और जीवन के रूप भी कितने कमाल के हैं, एक छोटे से बीज से पौधे का उगना, जर्मिनेशन।
या फिर वो कैटरपिलर का तितली बन जाना, मेटामॉर्फोसिस।
हाँ ये सब अद्भुत है।
और ये जीवन अकेला नहीं है, है ना? ये सब जटिल इकोसिस्टम्स में आपस में जुड़ा हुआ है।
जैसे जंगल या महासागर।
हाँ, और ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं है, ये बहुत जरूरी काम करते हैं। हवा साफ करना, पानी को फिल्टर करना,
अच्छा, तो ये सिस्टम बहुत जरूरी है।
बहुत। और पृथ्वी की इस प्रणाली को समझना हमें इसकी कॉन्जर्वेशन यानी इसके संरक्षण की जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है।
निर्भरता, इसी में खाना और पानी भी आते हैं।
बिल्कुल, खाना हमें एनर्जी देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है।
और भारत की विविधता तो खाने में भी दिखती है, कितनी तरह के खाने हैं।
सही कहा। और पानी, पानी तो खैर जीवन के लिए अनिवार्य है ही, शरीर का तापमान बनाए रखने से लेकर खेती तक।
हाँ अच्छा, अध्याय में एक मजेदार तथ्य था, शहद कभी खराब नहीं होता, ये सच है?
हाँ, ये बिल्कुल सच है। असल में पुरातत्वविदों को हजारों साल पुराना शहद मिला है जो अब भी खाने लायक था।
कमाल है, क्यों?
इसकी वजह है शहद में पानी की मात्रा बहुत कम होना और उसका थोड़ा अम्लीय मतलब एसिडिक होना, इससे बैक्टीरिया पनप नहीं पाते।
अच्छा, ये तो गजब है। अच्छा, अब हमारे चारों ओर की चीजों की बात करते हैं, कागज, धातु, प्लास्टिक, रबर।
हाँ, ये सब अलग अलग मटेरियल से बने हैं।
और इन्हें उनके खास प्रॉपर्टीज यानी गुणों के आधार पर चुना जाता है ना?
बिल्कुल, जैसे मजबूती चाहिए तो धातु, हल्कापन चाहिए तो शायद प्लास्टिक।
और इन मटेरियल्स को समझना रिसाइकलिंग के लिए भी जरूरी है।
बहुत ज्यादा। प्लास्टिक, धातु, कांच, जब हम इन्हें अलग करते हैं तो हम न सिर्फ जरूरी संसाधन बचाते हैं
हाँ
बल्कि प्रदूषण भी कम करते हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी में विज्ञान का एक सीधा सीधा इस्तेमाल है।
सही कहा। अब आते हैं उस तरीके पर जिससे वैज्ञानिक ये सब समझते हैं, साइंटिफिक मेथड। वो टॉर्च वाला उदाहरण बड़ा अच्छा था।
हाँ, वो आसान है समझने के लिए।
तो दोहराते हैं, पहला कदम ऑब्जर्वेशन, टॉर्च जल नहीं रही।
ठीक।
दूसरा क्वेश्चन, क्यों नहीं जल रही। तीसरा हाइपोथेसिस, अंदाजा लगाया, शायद बैटरी खत्म हो गई है।
ये एक शिक्षित अनुमान है।
हाँ। चौथा एक्सपेरिमेंट, चलो नई बैटरी डालकर देखते हैं।
ठीक।
पांचवा एनालिसिस, क्या टॉर्च जली।
और छठा कंक्लूजन, अगर जल गई तो हमारा हाइपोथेसिस सही था,
और अगर नहीं जली
तो फिर सोचना होगा, शायद बल्ब खराब है। ये हमारा अगला हाइपोथेसिस बन जाएगा और फिर से एक्सपेरिमेंट करना होगा।
अच्छा, तो ये एक तयशुदा रास्ता नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक लचीला ढांचा है, जरूरत के हिसाब से इसे बदलना पड़ता है। कई बार नतीजे हमें वापस जाकर अपना सवाल या हाइपोथेसिस बदलने पर भी मजबूर कर देते हैं। और जैसा मैंने कहा, हाइपोथेसिस सिर्फ एक अंदाजा है, कोई साबित हुआ सच नहीं, उसे परखना, टेस्ट करना बहुत जरूरी है।
ये हमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से बचाता है, सबूतों पर ध्यान देना सिखाता है।
बिल्कुल, एविडेंस बेस्ड समझ।
और वो अलहजन वाली बात, 10वीं सदी में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, ये तो बहुत पहले की बात है।
हाँ, इब्न अल हैथम, जिन्हें अलहजन भी कहते हैं, उन्होंने प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स के अध्ययन में नियंत्रित प्रयोगों का इस्तेमाल किया था। ये साइंटिफिक मेथड के विकास में एक बहुत अहम पड़ाव था।
तो अगर इस पूरे अध्याय का सार निकालें तो क्या कहेंगे?
सार यही है कि विज्ञान हमारी सहज जिज्ञासा से शुरू होता है। ये हमारे चारों ओर है, पृथ्वी में, जीवन में, रोजमर्रा की चीजों में।
और साइंटिफिक मेथड,
वो हमें इस दुनिया को तर्क और सबूतों के आधार पर समझने और समस्याओं को सुलझाने का एक शक्तिशाली जरिया देता है।
बिल्कुल।
और यहाँ एक सोचने वाली बात निकलती है, जैसा अध्याय में इशारा किया गया है।
क्या?
अध्याय में पौधों की वृद्धि का ऑब्जर्वेशन करने और प्रकाश वाली हाइपोथेसिस, जैसे क्या ज्यादा रोशनी से पौधे बेहतर बढ़ते हैं, का परीक्षण करने का जिक्र है। तो सवाल ये है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के यही सिद्धांत,
हाँ,
किसी के अपने काम में या रोजमर्रा की जिंदगी में किसी मुश्किल या जटिल चीज को समझने के लिए कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम इस तरीके को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं।
बिल्कुल।
शायद हमारा AI दोस्त EB इसमें कुछ और मदद कर पाए। खैर, खोजबीन तो जारी रहनी चाहिए
हमेशा।